सो खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आज का दिन हम सबको बख्शा है ताकि हम कलाम मुकद्दस में से उसकी सच्चाई में से जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है सीखने वाले बने। और इस खुदा ने इस कलाम को जिसे बाइबल मुकद्दस कहा गया है अपने सब नामों से ज़्यादा अजमत दी है, इसलिए खुदावंद उन कौमों को, उन नस्लों को, उन कबीलों को बहुत ही मुबारक करता है, बरकत देता है जो उसके कलाम का एहतराम करते हैं, क्योंकि वाहद खुदा का लिखा हुआ कलाम है जिसके वसीला से हम उस जिंदा कलाम की पहचान करते हैं जिसका नाम तजस्मुल मसीह है, जो तजस्म हुआ, जो मुजस्म हुआ, जो हमारे दरमियान अपनी पहचान करवाता है, जिसका नाम है खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह, उसका नाम यीशु मसीह है। अगर हमारे पास लिखा हुआ कलाम ना होता तो हम कभी भी उस जिंदा कलाम के बारे में समझ नहीं सकते थे। इसीलिए मत्ती चार बाप उसकी चार आयत में लिखा है कि हर एक ईमानदार, क्या लिखा है, हर एक ईमानदार। यहां पर यह बात खुदावंद यीशु मसीह जब अबलीस से अजमाए जा रहे हैं तो ये बात चल रही है कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। हम जो ईमानदार हैं, हमारी तंदुरुस्ती का बायस, हमारी बहाली का बायस, हमारी हौसला फजाई का, हमारे मुसीबतों में हमारा इत्मीनान खुदा का कलाम है। जब हम तारीकी में होते हैं तो उसका कलाम हमारे लिए नूर बन जाता है, जब हम परेशानी में होते हैं तो उसका कलाम हमारे लिए तसल्ली बन जाता है, और जब हम मौत की हालत में थे तो यीशु मसीह हमारे लिए जिंदगी बन गया। सो आए हम चंद एक बातें सीखें, इसलिए बच्चों से गुजारिश है कि वो खामोशी इख्तियार करें ताकि ये रिकॉर्डिंग ना कि सिर्फ आप सुनेंगे, दुनिया भर में और बहुत सी प्यासी जाने हैं जिनको ये कलाम सुनने की ज़रूरत है, और बहुत सी जिंदगियां हैं जिन्हों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद नहीं लेकिन वो कलाम सुन सकते हैं इस नई आजाद और टेक्नोलॉजी के वसीला से। तो मैं चाहता हूं कि चंद लम्हों के लिए खुदा के हजूर झुकें, मुकम्मल खामोशी। खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं आज की सुबह के लिए। आज जो रोटी तूने हमारी रूहों के लिए तैयार की है, हमारी रूहों की फिक्र को तूने जो मद्देनजर रखते हुए खुदावंद कलाम दिया है, हमें सुनने की, समझने की, कबूल करने की और उस पर अमल करने की कुव्वत और ताकत बख्श। ये दुआ तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में मांगते हैं, आमीन। सो जो बहन भाई बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं मेरे साथ हवाला निकालें, इफ़सियों पहला बाप उसकी 19वीं आयत। इफ़सियों पहला बाप उसकी 19वीं आयत। किस किस को याद है कि जब पालूस रसूल ये खत लिख रहा था तो वो कहां पर था, कहां पर था, आवाज जरा बुलंद कहें, कहां पर था, कैद खाना में। जब उसने ये खत इफ़सियों की कलीसिया को यानी कि इफ़सस शहर के रहने वाले ईमानदारों को लिखा तो वो कैद की हालत में था। पालूस रसूल पर अल्जाम क्या था, क्या उसने चोरी की थी, नहीं। क्या उसने किसी से फरेब किया था, नहीं। किस बायस वो कैद में था, किसी को याद है, क्योंकि वो खुदावंद के नाम की मनादी करता था। इसका सबूत हमें किस तरह मिलता है, वो अपने हाथों से लिखते हुए कहता है इफ़सियों 3 बाप उसकी पहली आयत में, इसी सबब से मैं पालूस जो गैर कौम वालों की खातर मसीह यीशु का कैदी हूं। फिर इसी तरह वो सबूत के तौर पर 4 बाप उसकी पहली आयत में कहता है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं, अपने बुलावे के मुआफिक चाल चलो। फिर इसी तरह 6 बाप उसकी वो 20वीं आयत में भी कहता है, जिसके लिए जंजीरों से जकड़ा हुआ एलची हूं और उसको इस ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसे बयान करना मुझ पर फर्ज है। سو پالوس رسول اپنی حالت کو وہ بیان کرتا ہے کہ وہ مسیح کا قیدی ہے، مسیح کے نام کی خاطر قید میں ہے۔ اسی طرح اگلے خط میں بھی وہ بتاتا ہے کہ جب وہ کیسریا سپاہیوں کی قید میں تھا، رومیوں کی قید خانہ میں تھا، تو وہاں پر اس کی گواہی کے باعث نہ صرف کہ جیل کے باہر لوگ یسوع مسیح کو قبول کر رہے تھے، جیل خانے کے اندر جو لوگ دن رات کم سے کم دن میں چار سپاہیوں کی ڈیوٹی بدلتی تھی پالوس کے ساتھ، دن میں چار مرتبہ چار سپاہی اس کے ساتھ اپنی ہتھ کڑی لگا کر پھرتے تھے، جیسے بہت دفعہ جب پولیس کی گاڑی آتی ہے تو اس کے ساتھ بیڑیاں لگائی ہوتی ہے تو پولیس والے نے ہتھ کڑی پکڑی ہوتی ہے۔ تو پالوس رسول دعا کی حالت میں خدا کے کلام کو بیان کرنے میں، کلیسیاؤں کو خط لکھنے میں جب وہ مگن ہیں، تو سننے والے دیکھنے والے اس بات کا اشتیاق رکھتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے۔ جب انہوں نے پالوس رسول کا جسم دیکھا ہوگا تو پالوس رسول کے جسم پر اتنے زیادہ نشان تھے، کوڑے کھانے کے باعث، بینت جسے کہتے ہیں ڈنڈے کھانے کے باعث، پتھروں کے باعث اور دوسری مشکلات کے باعث اس کا بدن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نشانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور جب کیسریا کے جو سپاہی تھے، رومی سپاہی تھے، جب انہوں نے اس کا بدن دیکھا ہوگا تو وہ حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ ہے وہ عظیم سورما، یہ ہے وہ ایسا جنگجو جس کا بدن نشانوں سے، گواہیوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی جنگیں لڑی ہوں، جو رومی سپاہی تھے ان کے ایک دو تلوار لگی ہو، لیکن پالوس رسول کا بدن زخموں سے، نشانوں سے پر تھا۔ اس کا ہمیں مطالعہ جب کرتے ہیں تو پہلا کرنتھیوں اس کے خط میں ذکر ملتا ہے کہ وہ پالوس اپنی حالت بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے خطروں میں سے گزرا، مار کھانے میں، وہ بینت کھانے میں، اور پھر کوڑے کھانے میں، پھر پتھروں میں، پھر جہاز کے ٹوٹ جانے میں، پھر بھائیوں کے خطرے میں، پھر اور بہت سے خطروں میں وہ کہتا ہے کہ میں رہا۔ کس لیے؟ خوشخبری کے پیغام کے لیے، انجیل کی بشارت کے لیے۔ پالوس اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے نام کی غیرت رکھتا تھا، آج وہ غیرت بہت کم مسیحیوں میں پائی جاتی ہے، بہت کم۔ خدا ایسے لوگ ڈھونڈ رہا ہے، خدا ایسے نوجوان ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے لیے درد، جو اس کی سچائی کو دوسروں تک پہنچانے کی کیا کرتے ہوں، اپنے دل میں آگ رکھتے ہوں۔ پالوس ہم جیسا ہی گوشت اور خون کا بندہ تھا، اسے کس چیز نے اتنا زوراور، کس چیز نے اتنا تابعہ دار بنا دیا، کون سی قوت تھی جو اس کے اندر کام کرتی تھی جو آج ہمارے اندر نہیں کر رہی۔ اسی بات کو آج ہم جانیں گے۔ افسیوں پہلا باب اس کی 19 آیت میرے ساتھ نکالیں اور کوشش کریں سب اسے پڑھنے کی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس دوسرے حصہ کا، اس آیت کا اس دوسرے حصہ کو سیکھیں، جو قدرت، جو طاقت، جو لیاقت، جو قابلیت خدا باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ایمانداروں کے اندر رکھتی ہے اسے جانیں۔ افسیوں پہلا باپ اس کی 19 آیت میرے ساتھ پڑھیں۔ اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق۔ یہاں پر ہی رکیں گے۔ پالوس کہتا ہے ہم ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی کہ جنہوں نے یسوع مسیح کا یقین کیا ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، جنہوں نے یہ بات مان لی کہ ہاں یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے، وہی مجسم ہوا کلام ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں پالوس نے کہا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اسے شرمندگی نہیں ہوگی۔ ہم ایمان لانے والوں کے لیے مسیح میں کیا کچھ دستیاب ہے، دوسری اسی آیت کا دوسرا حصہ ہمیں بتاتا ہے۔ اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت، किसकी? खुदा की। खुदा की बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। इस कुदरत के लफ्ज को जब हम देखते हैं तो यूनानी जबान में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, डुनमस। ये लफ्ज यूनानी जबान का इस्तेमाल हुआ है। इसके पीछे जब हम इसकी तफसीर को, इसकी तशरी को देखते हैं, जिसका मतलब है किसी को लियाकत देना, किसी को कुव्वत देना, किसी को इस काबिल बनाना कि वो उस मकसद को पूरा कर सके जिसके लिए बुलाया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी को कहता है कि जी मेरा मकान बनाए, तो उसका क्या है, तजर्बा है मकान बनाने का। तो वो मिस्त्री क्या कहते हैं कि बातों से मकान नहीं बना सकता, उसे सीमेंट की जरूरत है, उससे बजरी की जरूरत है, ईंटों की जरूरत है, ताकि वो मकान बना सके। इसी तरह जब खुदा ने आपको बुलाया, जब आपने यीशु मसीह पर यकीन किया कि वो ही निजात दहिंदा है, वो ही मसीह है, तो उसने अपना पाक रूह बनी नू इंसान को दिया, खासकर उनको जो यीशु मसीह पर ईमान लाए। सो ये लफ्ज जो कुदरत का इस्तेमाल हुआ है, ये खुदा रूहुल कुद्दस की कुदरत के लिए इस्तेमाल किया गया है कि हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, यानी कि उसकी कुदरत हम सब के लिए दस्तियाब है, मौजूद है। जैसे पहलवान को लड़ाई लड़ने से पहले उसे खुराक खाने की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है, वैसे ही खुदा का कलाम हमें बताता है हमारे लिए वो तमाम औजार, वो तमाम बरकात क्या है, मौजूद हैं, ताकि हम मसीही जिंदगी को गुजार सकें, ताकि हम मसीही जिंदगी के इस सफर में आगे बढ़ सकें। याद रखें, मसीही जिंदगी का जो सफर है ये आसान नहीं। इसमें बहुत दफा आप ना उम्मीद होंगे, इसमें बहुत दफा आप कहेंगे कि छोड़ो मसीहत को, वहां पर कोई ढेरी लगी हुई है किसी बाबे की, किसी पीर की, उसको मान लें ये बेहतर है। आपकी दुआ वहां पर आप सोचेंगे कि जल्द सुनी जाएगी, और आज मसीहियों का ऐसा ही हाल है। मसीहियों का आज ऐसा ही हाल है कि बहुत से पीर, बहुत से बाबे छाबों को उन्होंने अपना खुदा की मानद बना रखा है, लेकिन खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। पुराना अहदनामा इसी बात के बारे में बार बार हमें सिखाता है, बार बार सिखाता है कि जब भी खुदा के लोगों ने अपना मुंह उससे फेरा, खुदा को क्या हुआ, दुख हुआ, खुदा कहर में आया, खुदा ने उनकी दुआओं को नहीं सुना, खुदा ने उनको गुलामी में भेजा। आज हम अपनी कलीसियाओं में, ईमानदारों की जिंदगियों में, वो कहते हैं हम यीशु मसीह के लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई इज्जत नहीं। वो कहते हैं हम यीशु मसीह के लाडले लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं। बड़े दिन की बहुत ज्यादा रोशनियां लगी हुई हैं हमारे मकानों पर, लेकिन हमारे दिनों में उसके कलाम का दीप नहीं जलता, उसके लिए कोई रोशनी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कुदरत, ये ताकत हमें दस्तियाब है, इसे इस्तेमाल करना शुरू करें। आपने सुना होगा मेरी जिंदगी का तरीकाकार कि मैं बुत परस्ती में बहुत ज्यादा वक्त गुजार चुका हूं, देवियां दलतों के बहुत से चिराग जलाए हैं, बहुत सी कब्रों पर जाकर धमाल पाई है, बहुत से पीरों के आगे झुककर देखा है, उनके पास जिंदगी नहीं। लेकिन जब इस कुदरत को, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत यानी कि खुदा का रूह, ये वो कुदरत है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, आपके लिए दस्तियाब है, आपके लिए मौजूद है, लेकिन सवाल है कि हम इसे किस तरह इस्तेमाल करें। ईमान के बायस। किसके बायस? ईमान के बायस। हम पिछले दिनों से क्या सीख रहे हैं कि हमें ईमान से चलने की जरूरत है, ना कि आंखों देखे पर। हनूक 300 साल तक खुदा के साथ चलता रहा, क्या ईमान के बायस या फिर किसी और कुवत के बायस? ईमान के बायस, ऐसा ही सिखाया ना आपको। नू ने किस लिए ये कश्ती, जो बहुत बड़ा बेड़ा उसने बनाया, किस तरह बनाया? ईमान के बायस। इब्राहिम ने जब अपने खानदान को छोड़ा, इब्राहिम ने जब अपने बाप को छोड़ा जो तारा था, जो वो भी बुत परस्त था एक वक्त में, जब उसने अपने घराने को छोड़ा, किस तरह छोड़ा? ईमान के बायस। अब्रानियों 11वां बाब पढ़ें, आपके ईमान की जो क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होगी। वो सब आप जैसे ही लोग थे, उन्होंने कोई ज्यादा कुव्वत या कोई और बात नहीं, सिर्फ ये किया था कि खुदा पर यकीन किया। हमें खुदा पर यकीन करने की जरूरत है बेटे, सुनो, खुदा पर यकीन करने की जरूरत है। आज मैं सात समुंदर पार से यहां पर उड़कर आपके पास आया हूं तो ईमान के बायस, कि मेरा ईमान है कि मुल्क पाकिस्तान में बेदारी आए, मेरा ईमान है कि इस कलीसिया में बेदारी आए, कलीसिया के नौजवान खुदा को वो मर्तबा दें जो देना चाहिए। बहुत दफा पुराने अहदनामा के लोगों जैसी हमारी हालत नजर आती है। आज जैसे सुबह पढ़ रहा था, इसका तलक नहीं लेकिन ये मेरे जहन में हवाला आ रहा है, मलाकी की किताब को जब हम देखते हैं तो उसके पहले ही बाप में उसकी छठी आयत में, ये उस वक्त के काहिनों की हालत है जो खुदा की हजूरी में जाते थे, उसे सजदा करते थे, उसकी इबादत करते थे, लोगों की रहनुमाई करते थे, तो खुदा उनको उस वक्त ये काम, ये बात उन पर ये वाजिया करता है। मलाकी नबी उसका पहला बाप, मलाकी की किताब उसका पहला बाप उसकी छठी आयत में लिखा है, रब्बुल फाज तुमको फरमाता है, उस वक्त के लोगों से खुदा बात करते हुए कहता है कि मैं तुमसे बात करता हूं, मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिन बेटे अपने बाप की, काहिनों से बात हो रही है, किनसे बात हो रही है? काहिनों से। किनसे बात हो रही है? काहिन कौन होता था? जैसे आज पादरी साहबान है, वैसे ही उस वक्त में काहिन होते थे जो खुदा की हजूरी में जाकर झुकते थे, खुदा से कलाम लेकर दुनिया उन लोगों तक पहुंचाते थे, खुदा के हजूर नजरें चढ़ाते थे, कुर्बानी को गुजरानते थे। जैसे उस वक्त काहिन थे, आज जैसे खुदा के खादम, जिसे चरवाहा भी कहा जाता है, पादरी साहब भी कहा जाता है, इंग्लिश में पास्टर भी कह देते हैं, और अगर ज्यादा चर्चेस पर वो काम करता हो तो निगेबान के तौर पर उसे बिशप भी कह देते हैं। तो खुदा का कलाम क्या बात कर रहा है कि काहिनों तुमने मेरे नाम की क्या की है? तहकीर की है, बेइज्जती की है। और सातवीं आयत, दूसरा हिस्सा क्या कहता है छठी आयत का, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है, पस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां पर है? बेटा खामोश हो जाओ, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां पर है? अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? पर तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। यहां पर खुदा उनको बात करते हुए सिखाता है, लेकिन वो आगे से जवाब कहते हैं, हमने किस बात में तेरी तहकीर की, किस बात में तेरी बेइज्जती की? आज भी ऐसी ही हालत है, खुदावन नहीं, असी सिर्फ कहते कि ग्यारी वाले दी कहिंदे कि खीर ही दिने आ, बाकी तेनू ते त्यौहार वाले दिन टाइम ते नहीं दिने आ। असी बाले शाह दे दीवे चलाउंदे आ, लेकिन असी शुक्रगुजारी ते दिने आ पादरी साहब नूं, की मसला आया इहदे च, किहड़ी कोई गल हो गई, ओनू भी ते तू ही बनाया। ये लोगों की हालत है। ते लोगों का की हुंदा डायलॉग, ओह भी खुदा दे बनाए हुए आ, खुदा दे बनाए हुए, लेकिन ओह इस्तेमाल जिन्हें भी मबूद दूसरे कि इस्तेमाल हो रहे हैं, शैतान की प्रस्तश ली। खुदा सिर्फ वाहद खुदा वा ते ओही प्रस्तश ते बुजुर्गी दे लायक आ, और कोई भी नहीं। जिस तरह कोई भी भैन नहीं चाहती कि ओदे खावन दियां दो बीवियां होन, इसे तरह खुदा नहीं चाहता कि कोई मेरी इबादत भी करे ते नाल चार पांच होर बागड़ बिले रखे हो, जिन्हों दियां खीरां पक्कन ते जिन्हों के दीवे चलन। नहीं, ए तहकीर आ खुदा दे नां दी, बेशक ए सख्त सख्त कलाम आ, लेकिन ए जरूरत आ सुनन दी। अज साड़ियां कलीसियां दे विच यही हाल आ, वड्डे वड्डे बाबियां दे, किसे दा वड्डा कौला फड़िया, किसे कोई शेर ते बैठा ते कोई अपना कहिंदे कि गड्डी चाक के खड़ोता, पता नहीं किदां किदां दे आ, मबूद बनाए हुए अपने, गलत। ਤਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕੀ ਸਕੂਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਟੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਕੂਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਾਬਾ ਫੈਜ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪੋਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਕਰੀ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੋ। ਇਫਸੀਓ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ, ਔਰ ਹਮ ਇਮਾਨ ਲਾਣੇ ਵਾਲੋ ਕੇ ਲੀਏ। ਹਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਕੀ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿਆ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਹੈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਲੂਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਚ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਮ ਇਮਾਨ ਲਾਣੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਉਸਕੀ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿਆ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਆਪਕੋ ਕੁਵਤ ਦੇ ਸਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਗੁਜ਼ਰਾ, ਉਸਕੇ ਦੋਸਤ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਕਾ ਬੇਟਾ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾ, ਜਬ ਉਸਨੇ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਲਿਖਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਛੁਪਾਨ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਗੀ। ਏਲੀਆ ਗੁਜ਼ਰਾ, ਜਬ ਵੋ ਡਰਾ ਹੁਆ ਥਾ ਔਰ ਵੋ ਤਮਾਮ ਮਬੂਦੋਂ ਸੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਥਾ, ਤੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸਸੇ ਬੋਲਾ, ਨਾ ਆਂਧੀ ਮੇਂ, ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਮੇਂ, ਬਲਕਿ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ। ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਵਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਫ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਭਲਾ ਲੱਭੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਆਸਮਾਨੀ ਖਿਆਲ, ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਹਾਂ ਕਬਰ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਵਾਹਦ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ੀਰੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਝੱਲੀ ਨੂੰ ਝੱਲੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ 24 ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ। ਯਹੂਦੀ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਲਾਮ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭੈਣ ਭਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਤੋਂ ਸੜਦੇ ਜਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਨਾਨ ਆ ਕਿਸੇ ਦੌਲਤ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਵਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੁੱਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਪ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਕਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੌਫ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਖੁਦਾ, ਹਮ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਕੇ ਲੀਏ, ਆਜ ਕਾ ਜੋ ਬੀਜ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਓ ਮੇਂ ਬੋਇਆ ਗਿਆ, ਹਮ ਸਭ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਾਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਂ ਯੇ ਦੁਆ ਮਾਂਗਤੇ ਹੈਂ, ਆਮੀਨ।